तारापरी सर्प महाराज की दी हुई शक्तियों के कारण अब भविष्य देख सकती थी। आगे क्या होने वाला है इसका एहसास उसे पहले ही हो जाता था। सरल भाषा में कहें तो तारापरी अब भविष्य देख सकती थी। तारापरी ने अमन को बताया था कि हमें किस ओर जाना है और किस रास्ते से। अमन ने तारापरी की बात मान ली थी और उसी रास्ते से आगे बढ़ गया था। वे लोग अभी 7-8 मिनट ही आगे गए होंगे, तभी चारों ओर से भयानक चीखों की आवाज़ें आने लगीं। अमन ने चारों ओर अपनी निगाहें दौड़ाईं, लेकिन उसे केवल आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमन ने तारापरी से कहा, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? तारापरी ने कहा, लेकिन आपने देखा तो है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी हमें सचेत रहना चाहिए, ये काली शक्तियों का जंगल है। इस जंगल में काली शक्ति का ज़्यादा जोर होता है। और इसी के साथ एक बार फिर भयानक आवाज़ आने लगी। आवाज़ें बेहद तेज़ हो गईं, इतनी तेज़ कि वे दोनों एक दूसरे से चिपके हुए भी एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते थे। तब तारापरी ने आवाज़ों को ध्यान से सुना और उन आवाज़ों का पीछा करते हुए नीचे की ओर देखा तो वो हैरान रह गई और उसके मुँह से भी एक तेज़ चिल्लाने की आवाज़ निकल पड़ी। अमन, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अमन, नीचे देखो, नीचे। अमन ने तारापरी के कहने पर नीचे की ओर देखा और बोला, क्या देखूं नीचे? तारापरी अमन का जवाब सुनकर हैरान रह गई और बोली, क्या तुम्हें नीचे वाले रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो केवल मुझे हरी हरी लंबी लंबी घास और छोटे छोटे फूल और उनके बीच में से होता हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता, केवल यही दिखाई दे रहा था। अमन की बात सुनकर तारापरी का दिमाग चकराने लगा और वो बोली, आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या वाकई आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? तब अमन ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? होश में तो हो तुम? जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? तब तारापरी झुंझलाकर बोली, मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस रास्ते पर मुझे कितनी ही जली हुई औरतें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे ही अमन ने ये सुना वो बुरी तरह से शॉक हो गया और तारा से बोला, तुम मजाक कर रही हो ना? तब तारापरी ने कहा, अमन सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं इस तरह का भयानक मजाक करूंगी? यहाँ पर ये 100-200 के बीच औरतें हैं जो आधी आधी जली हुई हैं और वे हमें ही देख रही हैं। अमन सर, बहुत डर लग रहा है इन्हें देखकर। तब अमन ने कहा, इसका मतलब है कि उस तपस्वी की शक्तियों के कारण तुम मरे हुए लोगों को भी देख सकती हो। ये सुनकर तारापरी डर गई और वो कांपती हुई अमन के गले लग गई। अमन उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और बोला, डरो मत, अगर ऊपर वाले ने तुम्हें किसी की आत्मा देखने की शक्ति दी है तो इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। अब तुम नीचे झाँक कर देखो, वो सारी आत्माएं क्या कर रही हैं। तब तारापरी ने नीचे देखा तो वो हैरान रह गई। वे सारी की सारी आत्माएं तारापरी की ओर ही देख रही थीं और कुछ अजीब सा खिंचाव था उनकी आंखों में। तारापरी ज्यादा देर उनकी आंखों में नहीं देख पाई। तब एक बार फिर तारापरी अमन के गले लग गई। अमन उसे पूरी तरह से संभाल रहा था। जल्दी ही वे दोनों जादुई छाते की मदद से उन अर्ध जली हुई आत्माओं वाले रास्ते से आगे बढ़ गए और अब कोई आत्मा उस रास्ते पर दिखाई नहीं दे रही थी। तारापरी ने नीचे की ओर झाँका, अब वहाँ कोई नहीं था। तारापरी ने राहत की सांस ली और वे लोग अभी थोड़ी दूर और गए थे तभी उन्हें पानी के झरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। साथ ही साथ कुछ परिंदों के कलरव की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अमन और तारापरी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि जरूर वो बूढ़ी माँ जिसके बारे में ये लोग सुनते आए हैं और जिनकी तलाश उन्हें यहाँ 100 कोस दूर तक ले आई थी, वो बूढ़ी माँ जरूर उन्हें यहाँ मिल जाएगी। और इससे पहले कि वे लोग कुछ सोच पाते, अचानक वो जादुई छाता चलते चलते एक पेड़ पर रुक गया। अमन और तारापरी दोनों हैरान थे ये देखकर कि ये छाता कैसे रुक गया था। अमन ने फिर से कोशिश की और देखा कि वो छाता आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। तब तारापरी अमन से बोली, अमन सर, मुझे लगता है कि ये छाता इससे आगे नहीं जाएगा, आगे हम लोगों को पैदल चलकर ही जाना होगा। तब अमन ने कहा, तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। एक काम करते हैं, छाते को यहीं छोड़कर इस पेड़ से नीचे उतर जाते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तारापरी ने भी हाँ में सर हिलाया और अमन तारापरी के कमर से बंधी हुई वो काली बेल्ट टाइप की पट्टी खोलने लगा था। उस वक्त वो तारापरी के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था और अमन हल्का सा झुककर तारापरी की पट्टी खोलने लगा था और जल्दी ही अमन ने तारापरी की पट्टी खोल दी थी। तारापरी पट्टी की वजह से अमन पर पूरी तरह से निर्भर थी। जैसे ही पट्टी खुली वो अपना बैलेंस नहीं बना पाई और अचानक अमन के ऊपर ही गिर गई और अचानक तारापरी के गिरने से अमन भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वो भी अचानक पैड के तने पर जा लगा और तारापरी तो पहले से ही उससे चिपकी हुई थी और अमन के गिरने से तारापरी के होंठ अमन के होंठों से जा मिले। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही प्यार के सागर में डूबे रहे, लेकिन जिस पेड़ के तने से अमन लगकर खड़ा हुआ था उस पेड़ की एक टहनी अचानक टूटकर नीचे गिर गई। अमन और तारापरी दोनों चौंककर एक दूसरे से अलग हो गए। तभी अमन सबसे पहले उस पेड़ से नीचे उतरा और फिर उसने तारापरी को नीचे उतरने में मदद करने लगा। जल्दी ही वे दोनों उस पेड़ से नीचे उतर गए और अमन और तारापरी ने एक नज़र पेड़ पर अटके हुए छाते को देखा। वो जादुई छाता भली भांति लटका हुआ था। इसका मतलब साफ था, ये छाता उनका इंतजार कर रहा था अपना काम पूरा करके वापस आने का। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं शॉपिंग पर जाते हैं और गाड़ी पार्किंग साइट पर लगा देते हैं, उसी तरह से उस छाते ने खुद को पार्क कर लिया था।
अमन और तारापरी ने पेड़ से उतरकर अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। वहां से उन्हें दो रास्ते दिखाई दे रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग अब किस रास्ते से जाएं, क्योंकि जो रास्ते उन्हें दिखाई दे रहे थे वे थोड़ी दूर जाकर ही गहरे घने जंगल में बदल रहे थे। ये उन दोनों की नजरें साफ देख सकती थी। तब अमन तारापरी से ये कहने ही वाला था कि उन्हें किस रास्ते से आगे जाना चाहिए, लेकिन अमन के बिना कुछ बोले तारापरी बाई ओर वाले रास्ते की ओर अपने आप ही खिंची चली जा रही थी। जा रही हो तुम कहां, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। तब तारापरी ने कहा, अमन सर, मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप मेरा यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा है मानो कोई मुझे इस रास्ते की ओर धकेल रहा हो। अमन उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने तारापरी का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, चलो देखते हैं क्या है इस रास्ते पर। तारापरी और अमन दोनों उस रास्ते पर चल दिए। अमन ने तारापरी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वे दोनों उस रास्ते को क्रॉस करते हुए घने गहरे जंगल में चले गए। पहले वे दोनों जादुई छाते की मदद से जंगल के ऊपर ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन अब तो वे लोग पैदल चल रहे थे, तो उन्हें जंगल के घने और गहरेपन का अच्छी तरह से एहसास हो रहा था। उन्हें रास्ते में छोटे छोटे कीड़े मकौड़े सब दिखाई दे रहे थे। शायद कितनी सदियों में पहली बार कोई वहां आया था, जिसके कारण चलने वाले रास्ते में भी बड़े बड़े घास उग गए थे।
तारापरी और अमन बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे और अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी उन्हें ढेर सारी रंग बिरंगी झाड़ियां दिखाई दी। वे दोनों चौंक गए और अमन ने कहा, ये कैसी अजीब सी झाड़ियां हैं, रंग बिरंगे फूल तो देखे थे लेकिन रंग बिरंगी झाड़ियां कभी नहीं देखी थी। और सोचने वाली बात ये थी कि इन झाड़ियों की वजह से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वे झाड़ियां कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी और घनी थीं। अमन, अब क्या करें, आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, और पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करें। अमन तारापरी को एक जगह खड़ा करके उन झाड़ियों के करीब गया। उसने सोचा, क्यों ना इन सामने वाली झाड़ियों को काटकर या तोड़कर रास्ता बना लिया जाए। ये सोचकर अमन जैसे ही आगे बढ़ा और उसने उन झाड़ियों को छुआ, तभी उसके हाथ में ढेर सारे घाव हो गए। वे झाड़ियां एकदम किसी तेज तलवार की भांति नुकीली थीं। जरा सा छूने पर ही अमन की उंगलियां और हाथ की कलाई पर काफी ज्यादा चोटें आ गईं। अचानक से चोट लगने पर अमन कराह उठा। तब तारापरी जल्दी से भागकर उसके पास गई और अमन से बोली, आप ठीक तो हैं ना सर। तब अमन ने कहा, इन झाड़ियों से दूर रहो, ये तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। तब तारापरी ने कहा, लेकिन अमन सर, वो। अमन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, वो क्या। तब तारापरी ने कहा, वो एक्चुअली सर, मैं अभी भी इन झाड़ियों की ओर खींची चली जा रही हूँ। क्या, लेकिन यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। अमन सर, मेरा खुद पर काबू खत्म होता जा रहा है, मैं किसी भी वक्त इन झाड़ियों में मिल सकती हूँ। तब अमन ने अपने एक सामान्य वाले हाथ से तारापरी का हाथ पकड़ लिया। चूंकि उसके दाहिने हाथ में घाव लगे थे, सो अमन ने अपने बाएं हाथ से ही उसका हाथ पकड़ लिया। अमन को अपना हाथ इस तरह से पकड़े हुए देख तारापरी को बेहद अच्छा लग रहा था और आज पहली बार वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। और चूंकि अमन ने भी अब तारापरी का हाथ पकड़ रखा था, तो वो भी तारापरी के साथ उन झाड़ियों की ओर खींचा जाने लगा।